ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथा श्रीमद्भागवत आठवां स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 26 से 28। श्लोक संख्या 28 बोर्ड में लिखी। तो इससे पहले हम श्लोक संख्या 26 और 27 का अनुवाद पढ़ेंगे। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। श्लोक संख्या 27। तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धामों को लौट गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास आए। श्लोक संख्या 28। दृष्ट्वा अरिणपि सैताज जात क्षोभांस्वनायकान् न्याषेध दैत्यराज श्लोक्या संधि विग्रह काल वेद। धन्यवाद। अनुवाद शब्दार्थ अनुपात परे शिला भक्ति विराम स्वामी श्रभुपाद की जरा। दृष्ट्वा देखकर अरिन शत्रुओं को अपि यद्यपि ऐसैतान लड़ने के किसी प्रयास के बिना जात क्षोभान विक्षुब्ध हुए स्वनायकान अपना सैन्य अपने सैन्य नायकों को न्यषेधत रोका। दैत्यराज दैत्यों के सम्राट महाराज बलि श्लोक अत्यंत सम्मानित तथा प्रमुख संधि समझौता कराने के लिए विग्रह तथा लड़ने के लिए काल समय वित्त पूर्णतया अवगत। दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भली भांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यपि उनके सेना नायक विक्षुब्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेना नायकों को मना कर दिया कि देवताओं को मारे नहीं। तात्पर्य, वैदिक शिष्टाचार कहता है, गृहे शत्रुमपि प्राप्तम विश्वस्तम अकुतो भयम्। जब शत्रु अपने विपक्षी के घर आए तो उनका स्वागत इस तरह से होना चाहिए कि वे ये भूल जाए कि दोनों पक्षों में शत्रुता है। बलि महाराज संधि करने तथा युद्ध करने की कला में दक्ष थे, अतः उन्होंने देवताओं का ठीक से स्वागत किया, यद्यपि उन्हें उनके सेना नायक विक्षुब्ध थे। इस तरह का व्यवहार पांडवों तथा कुरुओं के युद्ध के समय भी प्रचलित था। दिन के समय कौरव तथा पांडव पूरे बल से लड़ते थे, किंतु जब दिन ढल जाता तो वे एक दूसरे के शिविरों में मित्रों की तरह जाते और उनका स्वागत भी उसी रूप से होता था। ऐसे मैत्रीपूर्ण मिलापों में एक शत्रु दूसरे को मुंह मांगी वस्तु देता था। ऐसी थी पद्धति। ओम अज्ञानस्तमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्री युता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्णा। आज सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही रोचक प्रसंग, बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग। देवताओं तथा अध्याय का नाम है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। अपने आप में बड़ा विचित्र विषय है, शत्रुओं के बीच में संधि। और ये जो आठवां स्कंध है इसमें सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं अलग अलग मनमंत्रों में होने वाले भगवान के अलग अलग अवतार। चौथे अध्याय तक उन्होंने गजेंद्र की कथा की। गजेंद्र के समय कौन से भगवान का अवतार हुआ था, किस मनु में और कौन से भगवान थे, क्या नाम था अवतार का, हरि का अवतार हुआ और कौन सा मनमंत्र था, चौथा मनमंत्र था। इसके बाद पांचवें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कथा आगे बढ़ाते हैं और जब छठे मनमंत्र में पहुंचते हैं चाक्षुष मनमंत्र के उसमें, तो बोलते हैं कि भगवान अजित और कच्छप आए जिन्होंने समुद्र मंथन में की लीला की। ये सुनते ही परीक्षित बार में बोला रुको रुको, है ना, ये है एक्टिव लिस्टनिंग। अब जब ये आठवां स्कंद चल रहा है बारह स्कंद में से, तो सात दिन का था ये, तो कौन सा दिन होगा, पांचवा दिन या लगभग होगा, तो हम तो एक दिन और पांचवें दिन परीक्षित महाराज बिना कुछ खाए पिए, है ना, फिर निजला एकादशी आने वाली है और हम देखते हैं शाम तक हमारी क्या हालत हो जाती है। लेकिन पांचवें दिन होगा लगभग, परीक्षित महाराज बहुत ही एकदम मुस्तैद, एक मिनट, ये समुद्र मंथन, हे महान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने श्री सारा का मंथन क्यों किया, कैसे किया, वे कच्छा रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे, देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, कितनी डिटेल में पूछ रहे हैं। देखिए कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। तो ये परीक्षित महाराज जब इतने उत्साही श्रोता होंगे तो वक्ता का भी उत्साह बढ़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने आगे वर्णन करना शुरू किया और बताया कि किस प्रकार से इंद्र द्वारा एक दुर्व्यवहार हुआ दुर्वासा मुनि के प्रति और दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया, देवताओं का सारा ऐश्वर्य उनसे छीन लिया गया, महाराज दैत्यराज महाराज बलि ने पूरे यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन गए और देवता बेचारे अपमानित होकर पराजित होकर परेशान होकर जो पूरे ब्रह्मांड के सेवक थे अब वो रिफ्यूजी बन के घूम रहे थे, छिपते हुए डरते हुए घूम रहे थे, उनके पास कोई रहने का स्थान भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वो ब्रह्मा जी के पास गए, अपने नेता के पास। ब्रह्मा जी उनको भगवान विष्णु के पास ले गए, क्षीर सागर के तट पे। खूब प्रार्थनाएं की, बहुत लंबी प्रार्थनाएं हमने पढ़ी। और जब प्रार्थना बड़ी असहाय अवस्था में की जाती है तो भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। तो फिर भगवान प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने आकर सीधा ये नहीं बोला चलो ठीक है मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा वापिस जाओ, नहीं। भगवान ने बोला कि हे ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। इससे पहले है कि भगवान ने बहुत गंभीर वाणी में, बहुत गहरी आवाज में बोला, तुम मेरी आवाज सुनो, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। यानी कि भगवान उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, अब मैं जो कुछ बताने वाला हूं वो भी इतना आसान काम नहीं है, है ना, लेकिन है आपके लिए श्रेयस्कर। क्या है? उन्हें बोला कि जब तक आप उन्नत नहीं हो पा रहे हो, आपका समय ठीक नहीं चल रहा, असुरों का समय ठीक चल रहा है, तो आपको इसके अनुकूल ही चलना पड़ेगा, उनसे संधि करनी पड़ेगी। आप देखिए पहला सुनते ही कैसा लगा होगा देवताओं को, असुरों से संधि करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान पहले बता चुके श्रेयस्कर काम है। फिर बोला देखिए अपना हित प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है, तो अपने लाभ को कभी भूलना ना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो क्या लाभ है, क्या हमारा श्रेयस्कर है, क्यों संधि करें? तुम तुरंत ही अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न करो, जिसको पीकर आप अमर हो जाएंगे। और ये अमृत कैसे होगा, बताया क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां तृण औषधियां डालिए, मंदर पर्वत के लाइए, मैं आपकी सहायता करूंगा, चरणिंग कीजिए, अमृत उत्पन्न होगा। और बोला कि इस अमृत उत्पन्न करने के लिए धैर्य और शांति रखनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं होता, धैर्य और शांति रखिए, आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा। और जो कुछ भी असुर मांगे उनकी मांगे मांग लेना। अब बोलिए कैसा लग रहा होगा देवताओं, एक तो हमें घर से बाहर निकाल दिया, फिर बोले जो कुछ कहें उसकी बात मान ले, उनसे हम संधि कर ले। फिर बोले कि जो मंथन होगा उसमें से कालकूट विष भी उत्पन्न होगा, सुंदर नारियां भी उत्पन्न होंगी, कई तरह के जौहर उत्पन्न होंगे, तो ना तुम्हें भयभीत होना है, ना तुम्हें क्रोध आना चाहिए, ना तुम्हें लोभ उत्पन्न होना चाहिए, ना कोई कामुक होना है, आपको यह सब सहन करना है। फिर इस प्रकार कह के देवताओं को इस प्रकार सलाह देकर भगवान जो स्वच्छंद हैं वो अंतर्धान हो गए। और फिर भगवान को ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी नमस्कार किया। इससे मालूम चलता है कि देवताओं की क्या स्थिति है। अक्सर लोग बड़े भ्रमित रहते हैं कि भगवान राम ने रामेश्वर में शिव जी की पूजा की। भागवतों में हर स्कंद में लगभग ऐसा वर्णन आता है, कितने ही स्कंदों में, कि शिव जी और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, फिर वो चुपचाप अपने धाम चले गए। और फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। तो हम ये देख सकते हैं देवताओं की जो परिस्थिति, बहुत विकट परिस्थिति थी। इट वॉज लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन स्थिति थी। घर से बाहर हो गए, सारा सम्मान छीन लिया गया, सारा ऐश्वर्य छीन लिया गया, क्योंकि वे देवता हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। यह भौतिक जगत भी आपातकालीन स्थिति है, यह भौतिक अस्तित्व अपने आप में आपातकालीन है। हम देखते हैं हमारा पूरा जीवन पदम पदम यत विपदम, कभी भी किसी भी समय कुछ हो सकता है। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में जिनके अंदर देवी संपत्ति होगी वो किसकी शरण लेंगे? भगवान की शरण लेंगे। कहते हैं ना अक्सर आपातकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत मतलब किसके विपरीत? गुरु साधु शास्त्र के विपरीत। कई बार आपातकाल में व्यक्ति इतना घबरा जाता है कुछ भी कर बैठता है जो कि गुरु और शास्त्रों और साधुओं के निर्देश से बिल्कुल विपरीत होता है। अगर इसी वाक्य को हम उल्टा करें, विपरीत बुद्धि आपातकालीन, अगर हम विपरीत बुद्धि में कार्य करते हैं तो आपातकालीन परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं अपने जीवन में। इंद्र ने विपरीत बुद्धि से कार्य किया, दुर्वासा मुनि का उन्होंने तिरस्कार किया, उन्होंने महाप्रसाद की गार्लैंड दी, फूलमाला दी, उसको तिरस्कार किया, अपमान किया, विपरीत बुद्धि में कार्य किया, और आपातकालीन परिस्थिति पूरे देवताओं के लिए उत्पन्न हो गई। तो चाहे हमारे ऊपर आपातकालीन परिस्थिति आ जाए या हम अपने गलत कार्यों के कारण आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न कर दें, दोनों ही स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और जब भक्तगण ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी भगवान के शरण में जाते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन भी उत्सव बन जाता है उनको, कोई विश्वम पूर्णम सुखायते, फिर उनको कोई आपातकालीन की कष्ट सहन नहीं होते। हम देखते हैं ब्रज में प्रतिदिन इमरजेंसी होती थी, कोई ना कोई असुर, और भक्त लोग क्या करते थे, ब्रजवासी तुरंत कृष्ण की शरण ग्रहण करते थे। गोवर्धन लीला, यही इंद्र ने कितना संवर्तक वानरों से कितना ब्रज की तरह उनके पूरे ब्रजवासियों पर आक्रमण किया, सारे ब्रजवासी कृष्ण की शरण में गए। आम परिस्थितियों में ऐसा होता कि नंद महाराज ने एक साथ जो कि सभी गोपों के नेता हैं, अपने 7 वर्ष के बालक के कहने पे बोला सारे यज्ञ बंद कर दो, चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे, और उसके बाद इतना बड़ा संकट आ गया तो सब खूब पिटाई करते कोई जाता है उनके शरण में बोले मरवा दिया तो अपने अपने छोटे बालक के चक्कर में हमारा क्या हाल करवा दिया, फर्स्ट क्लास काम चल रहा था इतने सालों से, अब क्यों ऐसा काम किया। लेकिन सब कृष्ण की शरण में गए और 7 दिन 7 रात तक सब गोवर्धन के नीचे आनंद उठा रहे हैं, सारे इंद्र परेशान हो गए। तो ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में भी अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान हमें पूर्ण रूप से रक्षा प्रदान करते हैं। अपने जीवन में हो सकता है हमने कई लोगों को रक्षा प्रदान की हो, शरण दी हो, लेकिन हर एक रक्षक को भी एक रक्षक की आवश्यकता होती है। और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, भगवान, यह देखिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया धर्म पोजिदा केटव, ये तो निर्मत्सर है, एकदम शुद्ध भक्ति का इसमें वर्णन होता है। तो हम देखते हैं बार बार ऐसे वर्णन क्यों आते हैं कि असुरों ने आक्रमण कर दिया, देवताओं की यह स्थिति है। अब आगे जाके आप पढ़ेंगे ये पूरे 8वें स्कंद में आगे आने वाले 10 अध्यायों में लगभग देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध ही होता रहेगा और तरह तरह की कूटी नाती होगी, कैसे एक दूसरे को हराना है, जीतना है, उसके आगे वामन देव जी का भी अवतार इसीलिए होगा। तो क्यों ऐसा वर्णन हो रहा है, क्यों ऐसा वर्णन हो रहा है, ये लड़ाई झगड़े का वर्णन? क्या इससे हम सीख सकते हैं? लड़ाई झगड़े तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं, भागवतम खोलो उसमें लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अभी एक आगे का अध्याय आएगा जब देवता लोग अमृत का पान कर लेंगे तो ऐसा जबरदस्त युद्ध का वर्णन होगा कि आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड वॉर है वो भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसे ऐसे मिसाइल्स फेंके जाएंगे। भागवतम के अंदर ये सब वर्णन क्या चक्कर है, लड़ाई झगड़ों का वर्णन? पहले हम बहुत परेशान हैं, यहाँ तो हम शांति के लिए आते हैं, ओम शांति शांति हो जाए, ये लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। श्री राधा राधे का रमन कृष्ण बलराम के जय जगन्नाथ। हाँ, क्यों वर्णन है इतने झगड़ों का? यस, पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। यस, और हाँ, वेरी गुड माता जी, धन्यवाद। इसलिए कि बता रहे हैं कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस, ऐसी विकट परिस्थितियां हम सबके जीवन में आएंगी तो हमारे सामने एक उदाहरण है। भागवत तो मतलब केस स्टडी, हमारे सामने उदाहरण है भैया। ऐसी केस स्टडी में क्या करना चाहिए, पहले क्या किया, महाजनों ने कैसे किया, भक्तों ने कैसे व्यवहार किया, वैसे ही हमें करना चाहिए। तो आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे कि जब सब कुछ हमारी योजना के विरुद्ध जा रहा हो, हमारे सारे के सारी योजनाएं उल्टी हो गई, ऐसी परिस्थितियों में भी क्या हम भक्ति कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल कि देवताओं ने ऐसी परिस्थिति में भगवान की शरण ली। शरण लेने का अर्थ है कि मेरी योजना के अनुसार काम नहीं होगा, भगवान आपकी योजना के अनुसार काम होगा। चाहे आपकी योजना मुझे पसंद है कि नहीं, अब आप कह रहे हैं कि शत्रुओं के पास जाओ, उनसे संधि करो, जैसा वो कहे वैसा करो, ठीक है, करेंगे, आपने कहा। और सबसे मुख्य बात, भगवान ने बोला मैं आपके हित की बात करूंगा। देवताओं को ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान की बातों पे पूर्ण विश्वास। ऐसी विकट परिस्थितियां हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। हमारी श्रद्धा कितनी दृढ़ है, गुरु में, साधुओं के वचनों में, शास्त्रों की बातों में कितनी श्रद्धा दृढ़ है? जिसमें श्रद्धा होगी वहीं तो शरण लेंगे, प्रभुपाद जी भगवद गीता के 17वें अध्याय में लिखते हैं, अ कंडीशन सोल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन हिज मोड्स ऑफ नेचर। बद्ध जीव को अपने प्रकृति के गुणों में बड़ा श्रद्धा है, अक्सर हम उन्हीं की शरण देते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा गुरु साधु शास्त्र के वाक्यों में होगी तो हम ऐसी विकट परिस्थितियों में विशेषकर आवश्यकता है, हम एक हितेशी की आवश्यकता होती है। हम बिल्कुल विस्मित होते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो भगवान ने तभी बता दिया मैं आपका हितेशी हूं, आपके हित के लिए बात कर रहा हूं, हो सकता है सुनने में अच्छी ना लगे बट करो। और देवताओं ने चुपचाप इसको मान लिया। अब सोचिए जब सारे शिवजी और ब्रह्मा जी चले गए, अब इंद्र की ये उत्तरदायित्व था कि सब देवताओं को लेकर बलि के पास जाना। और इस समय जो बलि थे दैत्यराज पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, और उनसे डर कर ये सब घूम रहे थे देवता, इधर उधर छिप रहे थे। अब भगवान बोले जाओ उनके पास, तुम गए। यानी कि अब ऐसी विकट परिस्थिति में इमरजेंसी में इंद्र के रूप में उत्साह और इंद्र के अंदर एक जिसे कहते हैं साहस आया, एकदम निहत्थे होकर सारे हथियारों को त्याग कर अपने शत्रुओं के कैंप में जाना। और ऐसे शत्रु जो कि दैत्य हैं वो तो कभी भी कुछ कर सकते हैं, वो उनके पास शक्ति है, लेकिन उनके पास गए। तो ये पहला हम यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं कि विकट परिस्थितियों में हम भगवान भक्तों की शरण में जाएं और हमें पूरी श्रद्धा रखें, क्योंकि ये इस परिस्थितियाँ हमारी श्रद्धा को हिला सकती है। लेकिन हम पूरी श्रद्धा रखेंगे और उनकी परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे तो देखेंगे कि कैसे जो देवतागण हैं उनको अमृत प्राप्त होता है। भगवान ने बोला कि आप जाओ आपको अमृत मिल जाएगा। देवतागण ये भी सोच सकते थे पहले हम कमजोर हैं और असुर लोग बहुत शक्तिशाली है, अमृत निकला तो वो ले जाएंगे सारे, ये तो मरवा देंगे, पहले मेहनत भी करवा दी फिर वो भी हो गया। ये भगवान ने बोला नहीं करो, मैं हूँ, मैं तुम्हें अमृत दिला दूंगा। और भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे, चलो आप आए मेरी शरण में, मैं आपके ऊपर उद्धार करूंगा, अपना एक विराट रूप लेते, सारे के सारे अस्त्रों को निकल जाते। भगवान के लिए मुश्किल थोड़ी है, एक सांस अंदर लेते हैं प्रलय हो जाती है, क्या है तुरंत संहार कर देते। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया है? हाँ लीला ले लो, लीला है। भगवान रसिक शेखर है, भगवान परम करुण रसिक शेखर, हर एक अवतार के विषय लीला, भगवान आनंद स्वादन करते हैं। देखेंगे क्षीर सागर के अंदर मंथन होगा, मेरी पीठ खुजलाई जाएगी और मैं पूरा मंदार पर्वत को उठाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ देवताओं को भी उद्धार होगा। और साथ ही साथ ये जो देवतागण हैं मेरे मैनेजर हैं, इनको भी प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि आप हमेशा अनुकूल परिस्थितियां नहीं अपेक्षा कर सकते, विपरीत परिस्थितियां आएंगी आएंगी, उसमें कैसे मैनेज करना है करो। तो ट्रेनिंग देने के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, चलो अब इसको परिस्थितियों में जाओ, शत्रुओं के कैंप में जिनसे आपने युद्ध किया था अब उनके से जाके संधि करो। Okay. अब हम देखते हैं बलि महाराज का चरित्र। दृष्टवान अरिन अपि असंताज। अब देखिए बलि महाराज सारे अपने कमांडरों से घिरे हुए हैं और उनका ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, और सामने से देखते हैं इंद्र आ रहे हैं और सभी देवतागण आ रहे हैं। अरिन शत्रु है और लेकिन असंताज बिना लड़ाई की तैयारी के, बिना लड़ाई की इंटेंशंस के आ रहे हैं। इसको देखते ही क्या हो गया, जात शोभान स्वनायकान, शत्रुओं को देखते ही उनके जितने कमांडर थे सेना नायक थे गुस्सा आ गया, इनकी हिम्मत यहां आने की, अभी इनको खत्म करते हैं, अभी इनको मार देते हैं। न्याशदेव बलि ने रोका उनको, दैत्यराज श्लोक्य, क्योंकि बलि महाराज अत्यंत सम्मान्य तथा प्रमुख है। श्लोक्य शब्द बहुत विशेष है, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में श्लोक शब्द का अर्थ करते हैं प्रसिद्ध फेमस, और यहां पे श्रीला प्रभुपाद जी वही बात दिख रहे हैं, अत्यंत सम्मानित तथा प्रमुख। किस लिए अत्यंत सम्मानित तथा प्रमुख है? संधि विग्रह कालवित, क्योंकि बलि महाराज बहुत निपुण हैं ये देखने में कि कब संधि करनी है कब युद्ध करना है। कितनी बड़ी विशेषता है, एक जो लीडर है उसके अंदर एक क्वालिटी अति आवश्यक है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कैसा समय चल रहा है, कब संधि करनी है कब युद्ध करना है। ये कहते हैं कि लीडर का जो डिसीजन मेकिंग है वो श्वास लेने के समान है, जैसे श्वास लेते हैं तो श्वास में भी संतुलन होना चाहिए, कितना अंदर ले रहे हैं कितना बाहर छोड़ रहे हैं, है ना। खासकर जो अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं ना, जितने समय अंदर लिया गिनती करके उतने समय बाहर निकाले, है ना। उसी ढंग से जब एक लीडर डिसीजन लेता है तो मिक्स बैलेंस होना चाहिए, संतुलन। मेरे व्यक्तिगत लाभ को भी देखना है और पूरे समुदाय के लाभ को भी देखना है। तो बलि महाराज संतुलित थे, निहत्थे आ रहे हैं, देखते हैं सुनते हैं और देखते रहो सब। बाकी तो कमांडर गुस्से में आ गए, अभी मारते, रुको रुको रुको, क्योंकि बलि महाराज बहुत प्रसिद्ध हैं। बलि महाराज विरोचन के पुत्र हैं और किसके पौत्र हैं? प्रहलाद महाराज। और पर पौत्र किसके हैं? हिरण्यकश्यप। और पर भतीजा किसके हैं? हिरण्याक्ष। तो क्या उनके लीनियज देखिए, एक से बढ़कर एक महारथी। तो बलि महाराज के पास बड़े विकल्प थे, अपने पिताजी को फॉलो करें, अपने दादा को फॉलो करें, अपने पर दादा को फॉलो करें, अपने पर चाचा को फॉलो करें, किसको करें। तो उन्होंने किसको चुना? प्रहलाद महाराज। और आगे हम देखेंगे बलि महाराज का चरित्र इस आठवें स्कंद में, इतना सुंदर चरित्र निकल के आएगा वामन देव के प्रसंग में। वामन देव भी इस तरह से बलि महाराज की सभा में गए थे, एक छोटे से ब्राह्मण बन के, बोला बस तीन कदम दे दो। बलि महाराज बोले किससे मांग रहे, देखो दोसे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी से तीन छोटे पैसे आपका कद बहुत कम है, और छोटे से तीन कदम आप क्या कह रहे हो। बोला नहीं, जिसकी मन और इंद्रियां संयम में है वो उसी में संतुष्ट रहता है। तो लो शुक्राचार्य ने बोला मत करो मत करो, धोखा दे रहा है, ये विष्णु है सब कुछ हर लेगा। और बलि महाराज भी समझ गया ये विष्णु है, लेकिन बलि महाराज ने वचन दे दिया था पीछे नहीं हटे, इसलिए फेमस नहीं, कोई बात नहीं, अब हरिए जो हरना हर लो। और विष्णु ने क्या किया, वामन देव जी ने पहले ही कदम में पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया, दूसरे कवर में पूरे इस ब्रह्मांड से परे चले गए। तीसरा कदम रखने के लिए बोला बलि अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम नरक में जाओगे, तुम्हें बंदी बनाया गया, अपने ही सेवकों के सामने बंदी बनाया गया। और जब वामन देव जी ऐसा कर रहे थे, उनके नेता इसी ढंग से बड़े क्रोधित हो गए, अभी इन पे आक्रमण करता हूं। तभी बलि महाराज रुको रुको, अब मैंने वचन दे दिया, इनको पूरा करने दो, मुझे पूरा करने दो। तो बलि महाराज के साथ भगवान ने ऐसा व्यवहार किया, पहले तो भिक्षुक बन के आए थे, सब कुछ हर लिया, उनको इतना अपमानित किया, उन पे इतना क्रोध किया, उनको अपने गुरु को त्यागना पड़ा, शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया। आप सोचिए ऐसे परिस्थिति में बलि महाराज बड़े आराम से वामन देव के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, ये तो फेयर डीलिंग नहीं है भगवान। हो सकता है विष्णु अलग बात है, लेकिन ये तो फेयर डीलिंग नहीं है, कुछ तो लगे ख्याल रखो। और दो कदम दे दिए और तीसरा कदम नहीं है नहीं जगह, तो हम क्या करें। अब आप ऐसे मुझे क्या मालूम था, और मुझे बंदी बना लिया और बोले अब नरक में जाऊंगा, सोचिए ना, ये कोई फेयर डीलिंग है। बलि महाराज ने किसी पे आरोप नहीं लगाया, ये है उनका चरित्र, इसलिए वो प्रसिद्ध है। और ये क्यों, किसको फॉलो किया उन्होंने? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के ऊपर भी ऐसे संकट आए, उन्होंने किसी को आरोप नहीं लगाया। जब प्रहलाद महाराज के ऊपर संकट आते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि उनको ऐसा लगता था कि हिरण्यकश्यप को मजाक कर रहे हैं, ऊपर से पहाड़ से नीचे फेंक दिया, मजाक कर रहे हैं, झूले देके मुझे फेंक दिया नीचे, बड़े गर्म घी में उबाल रहे हैं। उनको लगता ही नहीं था कि मेरे पिता मुझे मारेंगे, पिता कैसे मार सकते हैं। आप सोचिए कितनी इनोसेंस। तो उसी को फॉलो किया बलि महाराज ने, किसी को आरोप नहीं लगाया। ये बहुत बड़े चरित्र की बात है। हमारे पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हमारी योजनाएं इधर से उधर हो जाएं, हमारे पास पूरा विश्व है आरोप लगाने के लिए, इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण सबके कारण। ये ऐसी परिस्थिति, बलि महाराज फिर भी बड़े ग्रेटफुल, बलि महाराज ने बोला अगर आज आपकी ये लीला है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। तो ये बलि महाराज है। तो उन्होंने शत्रु आ रहे हैं, युद्ध की भावना से नहीं आ रहे, दैत्य अपने सारे कमांडरों को रोक दिया, नायकों स्वनायकों को रुक जाइए करने दीजिए, संधि विग्रह कालवित। बलि महाराज ने उनसे बातचीत की, आगे आके वर्णन आएगा। भगवान ने जब दर्शन दिए थे देवताओं को तो बता दिया था कि आप संधि करने जा रहे हो, एक न्याय दिया था, सर्प और मूषक का न्याय, सांप और चूहे का न्याय। आप सब जानते होंगे सांप और चूहा एक टोकरी में बंद है, तो सांप चूहे को खा सकता है लेकिन खा लेगा तो टोकरी के अंदर बंद ही रहेगा। बोले दोस्ती करते हैं, चूहे को बोला मेरा यार काटो इसको, फिर दोनों बाहर निकलेंगे इकट्ठे आराम से, फिर क्या ऐसे ऐसे दोनों कैद रहेंगे, फायदा क्या। तो चूहे ने काट दिया, सांप ने तुरंत खाया और बाहर निकला आराम से। तो उन्होंने बोला देवताओं को समझाया, इनसे लेबर का काम कराना, जैसा है कहीं वैसे मानना। जैसे आगे आप पढ़ेंगे वासुकी से खींचेंगे तो पहले देवतागण आगे से पकड़ते हैं, असुर पीछे से, असुर बोलते हम क्यों पीछे से पकड़े, हम आगे आगे, मान लो इनको आने दो आगे आप पीछे चले। तो ये लेबर का काम करेंगे, जब वासुकी ने शर्निंग शुरू हुई सारा का सारा जहर उनके ऊपर और असुर सारे काले हो गए। तो भगवान ने बोला इनको लेबर का काम करने देना, मैं तुम्हें चुपचाप अमृत दे दूंगा, ठीक है ना। तो इससे सर्प मूषक का न्याय, ये तो देवतागण इस इंटेंशन के साथ गए थे। और बलि महाराज भी मूर्ख थोड़ी थे, राजा थे, जानते थे सब कुछ, कैसे सब संधि करनी है, कब युद्ध करना है। तो बलि महाराज कभी यही सोच रहे थे सर्प मूषक का न्याय, आए हैं ठीक है इनसे काम करवा लेता हूँ, अमृत तो हमें लेना, हम इतने शक्तिशाली हैं, हम पावर में हैं, अमृत तो हमें मिलेगा, ठीक है दोनों यही सोच रहे हैं। लेकिन किसकी योजना सफल होगी, क्यों, भगवान उनके साथ। कितना आसान हो जाता है जब भगवान हमारे साथ हो, असंभव वस्तु भी बस संभव हो जाती है। तो ऐसा गए इसके बाद, तो जब आए तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, वैदिक शिष्टाचार कहता है गहे शत्रुमपम प्राप्त विश्वस्त मुकुतो भयम। अगर घर में शत्रु भी आए उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि वो सारी शत्रुता भूल जाए। तो हालांकि डिप्लोमेसी यूज हो रही है लेकिन फिर भी व्यवहार इतना सुंदर है। हम देखते हैं जैसे बलि महाराज के अंदर एक गुण है, श्रील प्रभुपाद जी में ही गुण थे, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में गुण होते हैं। श्रील प्रभुपाद भी कब डिप्लोमेसी यूज करनी है, कब आक्रमण करना है, कब संधि करनी है। नवंबर 1972 में श्रील प्रभुपाद जी हैदराबाद में गए, वहां बड़े पंडाल प्रोग्राम किए, और संयोग की बात है कि वहां पे जो बॉम्बे में जिनसे जमीन खरीदी थी प्रभुपाद जी ने, जो प्रभुपाद लीलामृतम पढ़ते हैं मिस्टर एन करके, वो भी आए हुए थे, और जो श्याम सुंदर प्रभु भी प्रभुपाद जी के साथ थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी प्रभु महाराज भी प्रभुपाद के साथ थे। तो श्याम सुंदर जी का अभी भी मिस्टर एन के साथ अच्छे संबंध थे, क्योंकि जो मिस्टर एन था वो श्याम सुंदर की पुत्री, क्या नाम था उनका, सरस्वती, उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो उसका करके बोला बोला कि आप आइए हमारे गुरु से मिलिए, प्रभुपाद जी मिलना चाहते हैं आपसे। अब जो मिस्टर एन थे वो बहुत दुष्ट व्यक्ति थे, वो डरते थे प्रभुपाद जी से, उनसे मिलने जाऊंगा पता नहीं बहुत बड़े संत हैं, कुछ शक्तियां वक्तियां लगा के मुझे बेवकूफ बना दिया, तो मैं अब जाऊंगा मिलने। वो अपने गुरु थे उनके, कोई ऐसे गुरु को साथ में लेके आए। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया, रात को प्रसाद हो रहा है, प्रसाद पादे पादे प्रभुपाद जम्हाई लेने लगे। उनके गुरु ने कहा स्वामी लगता है बहुत थके हुए हैं। हाँ बहुत थका हुआ। बोले ठीक है आप विश्राम कीजिए, हम भी जाकर विश्राम करते हैं। प्रभुपाद अपने कमरे में चले गए, मिस्टर एन और उनके गुरु अलग कमरे चले गए। कुछ ही मिनट बाद प्रभुपाद ने तमालचंद गोस्वामी को बुलाया। प्रभुपाद ने कहा अगर कोई ये बोले कि आप थके हुए हैं इसका मतलब वो थका हुआ है, तुरंत जाओ उनके कमरे में, तुम देखोगे कि मिस्टर एन और उनके गुरु दोनों खराटे मार के सो रहे होंगे। आप चुपचाप जाना और मिस्टर एन को जगा के आना, उनके गुरु को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तमाक्ष महाराज दबे पांव से गए और उसको हटाया, उठो उठो प्रभुपाद बनना चाहते हैं। और वो जो मिस्टर एन थे पहले नींद में थे, उसको समझ नहीं आया, बड़े आज्ञाकारी शीशे की तरह पीछे पीछे उनके आ गए। बाहर आए तो बाहर प्रभुपाद जी प्रतीक्षा कर रहे थे, 2 घंटे तक बातचीत करते रहे और उन्होंने मिस्टर एन को एग्री करा लिया कि एग्रीमेंट के लिए रातों रात श्याम सुंदर प्रभु तमाक्ष महाराज ने टाइप किया, एग्रीमेंट साइन करा लिया और उनका गुरु सोते रह गए। तो उसके बाद तमाम किशन महाराज प्रभुपाद जी को कहते हैं कि प्रभुपाद जब ऐसे डीलिंग्स होती है ना मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्या ये धोखा देना उठाना ये सब करना, मैं जप में भी मन में लगता। प्रभुपाद बोला दैट्स नेचुरल, मेरे साथ भी ऐसा होता है। फिर तमाम किशन गोस्वामी बोला बट लेकिन फिर भी मैं देख सकता हूं ऐसी परिस्थितियां होते हुए भी मुझे लग रहा है मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं। प्रभुपाद जी ने सर हिलाया। पितमाचार्य महाराज ने बोला कि प्रभुपाद अभी तक मैं सोचता था कि ऐसी परिस्थितियों से बच जाऊं, मैं भागता था ऐसी परिस्थितियों से, लेकिन अब मुझे लगता है भागना नहीं चाहिए। फिर प्रभुपाद ने बहुत विशेष बात बोली। पॉल बोला यस वी शुड वेलकम सच सिचुएशंस, दे गिव अस चांस टू एडवांस मोर इन डिवोशनल सर्विस। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों को हमने वेलकम करना चाहिए क्योंकि हमें मौका देती है कि हम भक्ति में और प्रगति करें। ये सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बताई। इसी ढंग से हम देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके अंदर भी प्रभुपाद जी का एक गुण, परम पूजनीय जयप्रदा गोस्वामी महाराज। परम पूजनीय जयप्रदा गोस्वामी महाराज के नेतृत्व में हैदराबाद में एक फार्म के लिए जमीन खरीदी जा रही थी। तो जब फार्म बन रहा था तो वहां के जो लोकल लोग थे उनसे कुछ झगड़ा हो रहा था भक्तों का, और वो आते थे कई मेरे भक्तों की पिटाई भी करते थे, और जो पुलिस थी वो कभी भक्तों का सहयोग देती थी कभी उनका सहयोग देती थी, जैसे पुलिस होती है। तो जब जयप्रदा गोस्वामी महाराज के पास ये बात पहुंची तो जयप्रदा गोस्वामी महाराज ने सोचा कि इसमें मुझे दो गड़बड़ लगती है, या तो पुलिस वालों के पास सही सूचना नहीं पहुंच रही, या जो हमारे वहां के रहने वाले भक्त हैं वो पुलिस से सही व्यवहार नहीं कर रहे। तो जब तक स्वामी महाराज गए वहां पर सारे भक्त लोग उनके साथ, तो पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे तो महाराज ने एक भक्त को भेजा जाके देखो अंदर, उनको बोलो कि हम लोग मिलने आए हैं। तो क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि सारे के सारे लोकल लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने भक्तों की खूब पिटाई की थी, और इतनी पिटाई की कि भक्त लोग परेशान हो गए, अब कोई भी वहां पर रहना नहीं चाहता था, बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन। तो जयप्रदा गोस्वामी महाराज वहां गए, उसको भेजा एक भक्तों के अंदर, पूछ के आओ इंस्पेक्टर से कि हम मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर ने भक्त को निकाला, भाग जाओ यहां से, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, तुम लोग बहुत खराब व्यक्ति हो, जाओ सर। तो ये सारी बात बताई जयप्रदा गोस्वामी महाराज को। तो महाराज पहले से ही बहुत गंभीर थे, जब ये बात सुनी तो बहुत गंभीर हो गए। सब भक्त लोग परेशान के महाराज क्या सोच रहे हैं, महाराज कुछ बोले नहीं, चुपचाप जोर से दरवाजा खोला और बहुत तेजी से चलते हुए गए इंस्पेक्टर के रूम की तरफ। सारे भक्त भाग के पीछे रहे, ऐसा लग रहा कि आज तो कुछ करेंगे, बहुत बड़ी बात होने वाली है ना। भक्त लोग बड़े परेशान, कुछ क्या होगा, और महाराज बड़े गंभीर होकर तेजी से जा रहे हैं। आप जानते हैं जयप्रदा गोस्वामी महाराज जब स्वस्थ थे तो क्या उनका आकार था। तेजी से गए, इंस्पेक्टर देख रहा है, उसके साथ उसके असिस्टेंट बैठा है, वो कोई चर्चा कर रहा है। इतने बड़े आकार के जयप्रदा गोस्वामी महाराज तुरंत जमीन पर लेट गए और मेज के नीचे से उस इंस्पेक्टर के पैर को छूने लगे। वो सारा इंस्पेक्टर हक्का पक्का रह गया, स्वामी जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मरवाओगे। और फिर जयप्रदा गोस्वामी महाराज खड़े हो गए और बहुत विनम्रता से आप बोले कि हमसे ऐसे क्या गलती हुई है कि आप हमसे बात भी नहीं कर रहे, हमारी बात तो सुनिए, हमारा जो जमीन का झगड़ा चल रहा है हम अपने निजी उपयोग के लिए नहीं ले रहे, हम तो पूरे समुदाय का भला करना चाहते हैं, हमारे में और उनमें बहुत फर्क है, और अभी उन लोगों ने हमारी पिटाई भी की तब भी आप उनका सहयोग दे रहे हैं, इसका मतलब आप हमसे नाराज हैं, ऐसी क्या बात है जो आप हमसे नाराज हैं। ऐसी विनम्रता देख के, ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जब महाराज की देखी, वो इंस्पेक्टर का हृदय तो पूरा पिघल गया। उसने बोला स्वामी जी अब चिंता मत कीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जमीन आपकी है, कभी कोई परेशानी हो हमें बताना, आप निश्चिंत जाइए। इस जंग से बताया, और फिर साथ साथ ये बोला कि मैं ऐसे व्यवहार कर रहा था, जब मैं आपके फार्म में गया तो आपके भक्तों ने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उल्टी सीधी बात कर रहे थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब आप आए हैं, अब कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से ऐसी विकट परिस्थितियों में हमें समुदाय के विकास के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। तो इसी ढंग से इंद्र बलि महाराज के पास गए, और बड़ी महाराज का हम चरित्र देखते हैं, जब वो आए तो उन्होंने बहुत स्वागत किया देवताओं का, उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि आप मेरे शत्रु हैं। ये वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति की सभ्यता है, कल्चर है, जो कि हम जैसे कलयुग के निवासियों को समझ नहीं आएगी। ये एक वैदिक संस्कृति का बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। कोई हमारे घर में शत्रु भी आया है, वो शत्रु, और ऐसे भी हम कैसी चर्चा करेंगे, वो शत्रु आपकी जान लेने आया है, फिर भी वो अपना मृत्यु को भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो घर में अतिथि आए हैं उनका सत्कार करेंगे। द्रौपदी जी लिख रहे, कौरव और पांडव दिन में लड़ते थे, रात को एक दूसरे के कैंप में जाते थे, खाते पीते थे, कुछ भी मांगे देना पड़ेगा, ये पद्धति है, ये सिस्टम था। अर्जुन गए, भगवान ने भेजा अर्जुन को, जाओ दुर्योधन के पास, वो 5 तीर लेके आओ। अगर भगवान चाहते तो भगवान उन 5 तीरों को निष्क्रिय भी कर सकते थे ना, भगवान तो कण कण में उन 5 तीरों को फूल के हार बना देते। भीष्म पितामह ने लिया था प्रण कि मैं इसे मारूंगा, अगले दिन से 5 पांडव की हत्या होनी है, भगवान ने बोला जाओ मांगो इससे। दुर्योधन जैसा द्वेषी व्यक्ति आप सोचिए, पूरा जीवन वो द्वेष करता रहा, लेकिन क्यों, मेरे शरण में आया है, वो मुझसे मांग रहा है, मुझे देना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। ये सभ्यता आप सोचिए क्या ऊंचा चरित्र होगा। कर्ण के पास इंद्र गए कि अपना कुंडल दे दे, इसको मालूम है कुंडल दे दे तो मेरी हत्या निश्चित है, सोचिए। लेकिन कोई भय नहीं है क्योंकि अतिथि है, मांग रहे हैं देंगे। इसी ढंग से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में और कृष्णा पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका में आते हैं, 17 बारी जरासंध से युद्ध हुआ, 18वीं बार महाराज भगवान ने लीला करने के लिए, नर लीला थी, मथुरा छोड़ के द्वारका में आ गए। इसके बाद से जो जरासंध था उसका अहंकार बहुत बढ़ गया, उसने जितने भी आसपास के राजा थे सबको बंदी बना लिया, 20,000 राजा को बंदी बना लिया। और एक बार जब भगवान बैठे थे अपनी सभा में, सुधर्मा सभा में, तो उनका एक दूत आए और भगवान से आके वो एक उनके लिए उनसे पत्र लेकर आया सभी राजाओं से कि हम लोग बहुत संकट में हैं, आपका अवतार होता है अपने भक्तों की रक्षा के लिए, हम आपके भक्त हैं, हमारी ये दुर्दशा हो रही है, हम बात को समझ नहीं पा रहे, या तुम्हारे पूर्व जन्मों का काम है, पहले अच्छे पुण्य कार्यों के कारण हम राजा बने, अब अपने पाप कर्मों के कारण हम बंदी बने। कहते हैं भक्ति से तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, आके रक्षा कीजिए। तो जब ऐसा वर्णन चल रहा था तो भगवान कृष्ण और सब उद्धव सब बैठे थे, सब योजना बनाने लगे कैसे इस जरासंध का वध करके इन राजाओं का उद्धार किया जाए। तभी वहां पर नारद मुनि आ गए, नारायण नारायण कहते हुए। भगवान ने बोला नारद मुनि अब तो सब कुछ ठीक है, कंस का वध हो गया, अब क्या खबर लाए हो आप, इस परमात्मा की सृष्टि में आपको सब चीजें मालूम होती है। नारद मुनि बोले परमात्मा तो आप ही हैं, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। भगवान ने पूछा पांडव कैसे हैं, बोले बस उन्हीं का संदेश लेके आया हूँ, युधिष्ठिर चाहते हैं मैं राजसूय यज्ञ करूँ आपकी महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपका संत प्राप्त करने के लिए, कृपया आप चलिए हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ में आप भाग लीजिए। भगवान चूंकि पूरी योजना बना रहे थे कैसे जरासंध का वध करना है, भगवान को ये उनका आइडिया अच्छा नहीं लगा कि अब उसको छोड़ के मैं हस्तिनापुर जाऊं। तो भगवान अब दो दो भक्तों से संदेश आ गए, एक हस्तिनापुर बुला रहे हैं, एक जरासंध के वध के लिए बुला रहे हैं। भगवान के लिए विकट परिस्थिति, इमरजेंसी। भगवान ने क्या किया, काउंसलिंग लिया किससे, उद्धव जी से। बोले उद्धव जी बताओ क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने बोला आप सब तो जानते हैं मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन सेवा के लिए आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी ने बहुत सुंदर प्लान बनाया, बोले देखिए युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ तभी संपन्न होगा जब सभी के सभी राजा उनका अधिपत्य स्वीकार करें, जरासंध उनका अधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए राजसूय यज्ञ करने से पहले जरासंध का वध होना आवश्यक है। तो आप हस्तिनापुर जाइए और जरासंध का वध कीजिए, इससे दोनों कार्य संपन्न हो जाएंगे। लेकिन अब जरासंध कोई साधारण राजा नहीं है, 10,000 हाथियों का उसमें बल है और उसको तो केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो कौन है, भीमसेन। तो आपको भीमसेन और जरासंध का अलग से कोई युद्ध कराना होगा, लेकिन ये परिस्थिति कैसी आएगी। तो उद्धव जी कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति कैसे उत्पन्न करेंगे, बोले ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे जरासंध जो भी है असुर है, लेकिन बड़ा अच्छा गुण है उसमें, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में है, परफेक्ट गृहस्था है। क्या बताया गया, गृहस्थों का धर्म बताया गया है दान देना और अतिथि सत्कार, इसमें वो बहुत प्रसिद्ध है, दान देने में और अतिथि सत्कार में। और अगर अतिथि ब्राह्मण है तो बहुत सत्कार, ब्राह्मणों की तो वो पूजा करता है, तो इसका लाभ उठाएंगे, अच्छे गुणों का लाभ उठाएंगे उसका उद्धार करने के लिए। तो भीमसेन को जो कि योद्धा है, क्षत्रिय है, उनको ब्राह्मण के वेश में जाना होगा, और ब्राह्मण के वेश में क्या भिक्षा मांगनी पड़ेगी, मुझसे युद्ध करो। लेकिन भीमसेन भी अकेला जिसके अंदर 10,000 दोनों के 10,000 हाथियों का बल है उनको हरा नहीं पाएगा। तो हे कृष्ण आपकी उपस्थिति भी वहां पर आवश्यक है क्योंकि आपकी बिना सहायता के बिना भीम जीत नहीं पाएंगे, पूरे की पूरी योजना बनाएंगे। तो इस योजना के साथ भगवान गए हस्तिनापुर और फिर जब देखा कि अब जाना पड़ेगा मगध राज जरासंध के पास, तो भगवान भीम और अर्जुन ब्राह्मण बन के गए जरासंध के पास। और हम जानते हैं जरासंध ने उनको देखा, जरासंध देखा कि ये तीन ब्राह्मण और भगवान, तो अब जानते हैं जब बोलेंगे कितना मधुर बोलेंगे। भगवान ने बोलना शुरू किया, हे जरासंध आप तो विख्यात हैं दान देने के लिए, आपकी महिमा तो रंती देव महाराजा शिवी हरिश्चंद्र की तरह है। और आप देखिए ना, शरीर तो नश्वर है कभी भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो यश है वो नश्वर नहीं है, शरीर तो समाप्त होना है। ऐसे कार्य करो, ऐसा दान दो कि आपका यश सनातन रहे, शरीर समाप्त हो जाए तो है भी क्या। तो ऐसी सुंदर बातें सुनकर जरासंध कन्विंस हो गए, ठीक है मैं शरीर भी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, यश मेरा रहना चाहिए। तो भगवान ने बोला मैं क्या कर सकता हूं, बोले हम तीन ब्राह्मण हैं। भगवान ने साफ साफ बोल दिया, देखिए हम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। जरासंध ने बोला मुझे तो लग ही रहा था, ये आपकी जो शरीर की डील आपका जो पूरा आकार है और आपके कंधे पर जो धनुष के निशान है, आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, तो मुझे मालूम था कि आप निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रहे हैं। लेकिन फिर भगवान ने बता दिया, देखिए मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है, ये अर्जुन है और हम आपसे युद्ध करने आए हैं। आप सोचो ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया, जरासंध जोर से हंसा, जोर से ठहाका लगाया, बोले कृष्ण तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं, तुम तो कायर हो। इससे पहले जब कंस का वध हुआ था तब भी जरासंध ने के साथ युद्ध हुआ, तो जरासंध कृष्ण को बोलते हैं तुमसे युद्ध करना ही नहीं क्योंकि तुम्हारा पता ही नहीं, तुम बचपन से ही छिप गए थे, गुप्त, तुम गुप्त छिप गए थे बचपन से, दूसरा तुम क्षत्रिय नहीं हो, और तीसरा ऐसे व्यक्ति से मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता जो अपने ही संबंधियों की हत्या करे, अपने मामा को मार दिया, ऐसे व्यक्ति से मैं युद्ध करूंगा तुम्हारा स्तर ही नहीं है। और ऊपर से 18वीं बार तो तुम भाग गए मुझसे डर के, तो तुम कायर हो, तो तुमसे हो जाओ, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान की भी योजना थी, मैंने तो करना ही नहीं अर्जुन तुम छोटे हो, बच्चे हो मेरे लिए, तुमसे भी युद्ध नहीं करूंगा, बराबर के नहीं हो, क्या करना युद्ध करके। भीम हाँ इससे मैं युद्ध कर सकता हूँ, ठीक है। युद्ध शुरू हो गया, पहले गदा, जरासंध ने खुद गदा दी, लो युद्ध करो, वो तो ब्राह्मण बन के आए थे, पहले गदा युद्ध हुआ, फिर मुष्टि युद्ध हुआ, खूब युद्ध होता था। और युद्ध जब समाप्त होता था तो उन्हीं के महल में रहते थे, खाते पीते थे आराम से, आप क्या संस्कृति थी आप देखिए, आराम से खाते पीते थे उनके महल में। अगले दिन होंगे फिर युद्ध करना, अब आपके घर में कोई आपका शत्रु रहना हो उसको आप खिलाएंगे पिलाएंगे, मालूम है कल फिर युद्ध करना है। बिल्कुल अचिंत्य ये बात है हमारे लिए। फिर करते थे, खूब लड़ाई होती रही, 27 दिन तक ऐसा युद्ध चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 28वें दिन भीम ने बोला कृष्ण मैं नहीं मार पाऊंगा, संभव नहीं है। तो भगवान वाला कोई बात नहीं, आप लड़ो, आज आपको बताऊंगा कैसे मारना है। तो हम जानते हैं कि भगवान ने एक शाखा ली, उसको बीच में से काटा, भीम को ये आइडिया मिला और भीम ने फिर जरासंध का वध किया। तो हम ये देख सकते हैं कि विकट परिस्थितियों में भी हमें अपने प्रिंसिपल्स पे, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जरासंध जैसा असुर भी, ये संस्कृति थी कैसे विकट परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों पे वो खड़े रहे, अटल रहे। ऐसा नहीं कि ऐसी परिस्थिति में भूल जाता कि मैं दान नहीं दूंगा, मैं अतिथि सत्कार नहीं करूंगा, ऐसी अतिथि में सत्कार थोड़ी करूंगा जो मुझे मारने आए, नहीं, ऐसी परिस्थितियों में भी अतिथि सत्कार किया, उन्होंने दान दिया। जब हम अपने जो वस्तुएं, जो प्रिंसिपल्स हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, जो हमारे लिए बहुत हितकारी हैं, उनका हर परिस्थिति में जब पालन करेंगे तो तभी हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। जो व्यक्ति अपने किसी प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करता, कोई सिद्धांतों पे खड़ा नहीं है, तो उसके जीवन में, उसका जीवन अर्थहीन है, उसके जीवन में कोई सार नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, तो हम अपने जीवन में बिना सिद्धांतों का पालन किए संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। कलयुग के जीवन में हम सब में यही दिक्कत है, हमारा कोई कल्चर नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह का प्रशिक्षण नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। आजकल तो बताया जाता है कुछ भी करो, कुछ भी करो, काटो पीटो जो मर्जी करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन ये संस्कृति नहीं है। अगर काट पीट के हम लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेंगे, धोखाधड़ी करके कुछ भी प्राप्त कर ले, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसीलिए तो कलयुग के जीवन में किसी पास संतुष्टि नहीं है, क्योंकि कोई अपने सिद्धांतों पे कड़ा नहीं रहता। इसलिए आज के इस प्रसंग से मुख्यतः हम तीन बातें समझते हैं कि अगर विकट परिस्थितियों में हम भक्ति कैसे करें, ये इस तरह की केस स्टडी है। तो पहली बात, आगे भी बहुत सी विकट परिस्थितियों में बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी, मगर अभी तक के प्रसंग में जो आज हम चर्चा कर पाए, पहली बात कि जैसे देवताओं ने ऐसी विकट परिस्थितियों में भगवान की शरण ली, भगवान पे पूरी श्रद्धा रखी, भौतिक तर्क से काम नहीं लिया, भगवान पे श्रद्धा रखी, हमें भी विकट परिस्थितियां जितनी भी आए, इमरजेंसी जितनी भी आए, भगवान में, भक्तों में और भक्ति में पूरा विश्वास रखना चाहिए। भक्त, भगवान और भक्ति, ये हमारे तीन आश्रय हैं। भक्ति मीन्स प्रोसेस, जो पूरा भक्ति का साधना का हमारा प्रोसेस है, उस पर पूरा विश्वास, भगवान पे विश्वास और भक्तों पे विश्वास। दूसरा हम देखते हैं महाराज बलि के चरित्र में कि महाराज बलि एक्सपर्ट थे ये निश्चित करने में कि कब संधि करनी है, कब युद्ध करना है। उन्होंने प्रभुपाद जी का और जयप्रकाश गोस्वामी महाराज जी का भी उदाहरण देखा। तो भक्तों में निपुणता आनी चाहिए। कैसे निपुणता आएगी? जितना हम अच्छे ढंग से गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, जितना हम अच्छे ढंग से शास्त्रों की शरण ग्रहण करेंगे, जितना अच्छे ढंग से हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, जब हम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम कृष्ण के संपर्क में हैं। जितना हमारा आत्मीयता से इंटीमेट संपर्क होगा कृष्ण से, उतना हमारी बुद्धि तीव्र होगी ये निर्णय लेने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपपद्यते। तो ये दूसरा हम लेसन सीखते हैं। तीसरा कि कैसे बलि महाराज ने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी देवताओं का स्वागत किया, पूरे सिद्धांतों का पालन किया। हमने जरासंध का भी उदाहरण देखा कि चाहे कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में असली संतुष्टि आएगी। और जिस प्रकार से देवताओं और असुरों ने मिलकर इस अमृत को प्राप्त किया, श्रीला प्रभुपाद जी का भी ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। हम सब भी अमृत की तलाश में यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं, कृष्ण भावना अमृत। और हो सकता है इसमें भी हमारे इस संकीर्तन आंदोलन में कुछ भक्त हमें असुर लगते हो, कुछ भक्त देवता समान लगते हो, और हमारे अंदर भी दोनों आसुरी भी प्रवृत्तियां हैं और देवी प्रवृत्तियां भी हैं। तो लेकिन अगर सब हम प्रभुपाद जी की शरण में हैं और सबका उद्देश्य वो अमृत प्राप्त करना है, तो जो भगवान का जो परामर्श है उसको स्वीकार करें कि अब हम संधि करके इस संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाएं, तभी हम इस अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Any questions or comments?
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी का, जिसमें एक क्वेश्चन ये था कि पॉलिटिक्स को यूज करना और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना, और पॉलिटिकल होना और सेल्फिश होना, इसमें बहुत ही थिन लाइन रह जाती है इस एग्जाम्पल से। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर,
वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी का प्रश्न, आप समझे होंगे कि ये डिप्लोमेसी, ये राजनीति का उपयोग जो प्रभुपाद जी ने हम देखते हैं किया ऐसे, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी कई बार दूषित हो सकते हैं, हम भी राजनीतिक पॉलिटिकल बन सकते हैं। तो इसलिए बताया कि कब संधि करनी है, कब आक्रमण करना है, इस समय को जाना, ये बुद्धि, ये परिपक्वता, ये मैच्योरिटी, ये आचार्यों में होती है। जितना हम भक्ति में परिपक्व होते हैं हम उस परिस्थिति को समझ सकते हैं। तो अगर हमें ऐसे डिप्लोमेसी का उपयोग करना पड़ रहा है सो इट शुड बी विद द कंसल्टेशन ऑफ सम वेरी फिक्स्ड अप डिवोटीज। हम अपना इसका उपयोग नहीं कर सकते एग्जाम्पल दे के हर छोटी बात में अपनी डिप्लोमेसी करते रहे। बोले प्रभु समुदाय को आगे बढ़ाना है तो वो प्रसन्न नहीं होगा। भक्तों को बहुत सरल होना चाहिए। सरलता ही वैष्णव है ना, भक्ति सिद्धांत सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सरल होना चाहिए, अति सरल, इतना सरल होना चाहिए कि अपने दुश्मनों को भी अपना रहस्य बता दे। और हम देखते हैं कि सरलता की परिभाषा प्रभु देते हैं, सरलता भी तो है ना। जरासंध को भी देखें अगर, हालांकि असुर है तो सरल, उसको मालूम है कि मुझे मारने आ रहे हैं, ठीक है जो होगा देखी जाएगी आप लोग। तो ये हर जगह डिप्लोमेटिक होंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल एज इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब ऐसे मिशन को कोई हानि होने वाली हो, ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, तो बहुत परिपक्वता के साथ अपने सेल्फिश डिजायर के लिए करेंगे तो नुकसान ही नुकसान। अरे बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि एक तो है नियमों का पालन करना, प्रिंसिपल्स का पालन करना, और एक है नियम आ गए, नियम आ गया कि प्रिंसिपल्स के नियमों के चक्कर में फंस गए और लक्ष्य को भूल गए। प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है हित को याद करते हुए, श्रेयस्कर को याद करते हुए। भगवान ने पहले बता दिया हित को याद करना है, इस समय दोनों का हित है अमृत को प्राप्त करना। तो केवल नियम, नियम मांगने का मतलब है नियमों को पालन करें, केवल नियम फॉर्म उसी औपचारिकता के लिए लक्ष्य को भूल गए। अब यहां पर प्रिंसिपल था कि अतिथि सत्कार और दान देना, जो गृहस्थ के प्रिंसिपल है। कुछ भी परिस्थिति आए इसमें कंप्रोमाइज नहीं। तो बोला शरीर नश्वर है, यश तो नश्वर नहीं है, तो उस प्रिंसिपल को फॉलो किया, नियम आग्रह नहीं। सेल्फ प्रोटेक्शन आवश्यक है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सब युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये वैदिक संस्कृति है कि युद्ध के समय भी सभ्यता, युद्ध के समय भी प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। उनसे युद्ध कर रहे हैं तो जरासंध उनको पहले गदा दे रहे हैं, चलो इससे युद्ध करो, हथियार है तो इसे युद्ध नहीं करेंगे। अभी आज के इस मानसिकता में हमें पागलपन लगे, बेवकूफी लग रही है।
हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए?
आज के युग में अगर व्यक्ति हमें धोखा ही धोखा दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए?
मतलब उस समय दोनों एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में अगर सामने वाला व्यक्ति भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा, कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा,
हाँ तो ठीक है। आज की डेट में हम अपने, आज की डेट में हमें ये नहीं बताया जा रहा कि कोई शत्रु आएगा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, बोले यहाँ चुपचाप साइन कर दो सारी प्रॉपर्टी मेरे को, हम नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि उसके इंटेंशंस क्या हैं। और हमें जो एक भक्त है वो अपनी प्रॉपर्टी की, अपने शरीर की रक्षा करता है भगवान की सेवा के लिए, उसको क्यों देंगे? यस
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे जो भी एग्जाम्पल्स आपने अपने प्रवचन में बताया सभी हम देखते हैं, सारे एग्जाम्पल्स थे कि डीलिंग्स जो भी हो रहा था अब टू डिफरेंट पार्टीज में हो रहा था, एक अपोजिंग पार्टी है और एक दूसरी पार्टी है, इट्स लाइक दैट। लेकिन हम देखते हैं भक्तों के समाज में जब भक्त हैं और अगर लक्ष्य की बात करते हैं, दोनों भक्तों का लक्ष्य एक ही हो सकता है लेकिन उनमें आपस में मनमुटाव मतभेद आ जाता है। और फिर ऐसा भी देखा जाता है कि दोनों भक्त ही कृष्ण की प्रसन्नता की बातचीत कर रहे होंगे लेकिन उसमें बीच में डुप्लिसिटी भी आ जाती है और राजनीति भी ऐसा प्रतीत होता है। तो उस समय उस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि इस एग्जाम्पल से थोड़ा, जो भी एग्जाम्पल्स हमने अभी सुने उससे थोड़ा सा मैं रिलेट कर पाने में मुश्किल लग रहा है मेरे को।
अगर हम भक्तों के डेली में कुछ डुप्लिसिटी देखते हैं तो मेरा मानना यह है कि डुप्लिसिटी का जवाब डुप्लिसिटी नहीं है, हम विनम्रता से लोगों को जीत सकते हैं। और वास्तव में अगर हर कोई भक्ति में साधना सही प्रयास कर रहा है तो उसका भी हृदय बदलेगा। एट द सेम टाइम जब हम देखें कि किसी भक्ति व्यवहार से पूरे मिशन को बहुत नुकसान पहुंचा है तो फिर वो विनम्रता है। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय होना, एक्शन नहीं लेना। विनम्रता का अर्थ ये है कि उस समय एक्शन लेना। और जहां तक व्यक्तिगत आघात हो रहा है तो भक्त सहन करते हैं, विनम्र रहते हैं। अगर हम डुप्लीसिटी का जवाब डुप्लीसिटी से ही देंगे तो फिर झगड़ा कभी समाप्त नहीं होगा। ये भौतिक मानसिकता है ना? जैसे जरूरत को पाल बोलते हैं नहले पे दहला नहीं करना, ये खत्म नहीं होगा। आपने नहला दहला वो फिर क्या, वो उसकी बात क्या है? लगा ही रहेगा, आगे पढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ओके, यस, माइक।
हरे कृष्ण। प्रभु जी देवता और असुरों के बारे में जो सुना उससे ये महसूस हुआ कि जो असुर थे उससे देवता का जो आदान प्रदान बाद में आपने व्याख्यान में किया, एक मैत्री एग्रीमेंट संधि जो होती है उसको अगर आप ये अपना लो कि असुर बहुत ही कठोर है, आक्रमणकारी है, लेकिन जब आप जैसे आपने व्याख्यान में कहा कि वहाँ तीन प्रभु गए और उन्होंने पता चल गया लड़ाई के लिए, जब भी किसी कठोर स्थिति में आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं उसके सामने तो निश्चय है कि उसका अंत इतना अच्छा होता है कि वो इतना मन को छू लेता है कि आने वाली परिस्थिति में वो आपके बचाव के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए पेट काट के उसको पालती है, वही मैं अपने ख्यालात से ये कहूँगा कि असुरों ने देवता के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया और उनके लिए जो भी त्याग करना होगा वो भविष्य में करेंगे, इससे हमें ये सीख। धन्यवाद।
हाँ, आपका ठीक है, लेकिन जो असुरों ने कोई ऐसा त्याग नहीं किया देवताओं के लिए, समझना पड़ेगा। ऐसा ने बताया कि असुर के अंदर भी एक डिप्लोमेसी चल रही थी कि अब इनका उपयोग करके हम अमृत को प्राप्त कर लेंगे, और देवता भी ये सोच रहे थे कि असुरों का उपयोग करके हम अमृत प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था और बिना एक दूसरे के सहयोग के अमृत प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो इसलिए दोनों ने ऐसा लग रहा है कॉपरेट किया। भगवान ने ऐसी परिस्थितियां लाई कि उनको कॉपरेट करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि असुर ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, नहीं। वो जो जरासंध का उदाहरण दिया है, जरासंध अपने सिद्धांतों पे बिल्कुल अटल रहे कि अगर मेरे घर में कोई आके मुझसे मांग रहा है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण है तो मैं दान जरूर दूंगा और अतिथि सत्कार करूंगा, वो बात हमने की। हाँ, लास्ट क्वेश्चन।
हर कृष्ण, कई सवालों से कई सारे जवाब पहले मिल गए। एक चीज जो पूछना चाहता था कि दरासन वाला एग्जाम्पल है, इवन बलि का एग्जाम्पल है, ऑल्दो बलि भक्त है मगर अभी असुरों के खेमे में है, तो या अगर हम हिरण्याक्ष की भी बात करें तो जब हिरण्याक्ष के साथ युद्ध होता है तो भगवान उसके पराक्रम से प्रसन्न होता है, एक्चुअली ही सेटिस्फाइज बाय बैटल। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि असुर जो है उसकी हमेशा उसकी पराजय होगी? जाहिरी बात है उसकी वजह है कि वो भगवान का भक्त नहीं है, मगर अगर असुर के अंदर कोई अच्छा गुण है तो भगवान उसकी भी सराहना करते हैं और उसका भी ड्यू उसे देते हैं। ये कंक्लूशन निकालना ठीक है?
निश्चित रूप से बलि महाराज का उदाहरण हम देखते हैं, है ना? और जैसे कि हम नरसिंह भगवान जी के प्रसंग में भी देखते हैं कि नरसिंह भगवान जब वध कर रहे हैं तो नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठते हैं, तो वहाँ प्रभुपाद जी दिख रहे हैं कि भगवान किसी के सिंहासन पर बैठ रहे अपने भक्त के सिंहासन पर तो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। भगवान जानते हैं मेरा प्रिय पार्षद है, तो भगवान कुछ भी गुण, किसी में भी कुछ भी देवी संपदा गुण है उसको स्वीकार करते हैं, उसको निखार के बाहर निकालते हैं। पूरा ये जो वामनदेव का प्रसंग इसीलिए बलि महाराज की महिमा को बढ़ाना, उनके जो गुण है उसको और सामने प्रस्तुत करना। थैंक यू सो मच। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।